शांति, कितना महान भाग्यशाली आत्माएं हैं भगवान हमको पढ़ा रहा है। भगवान स्वयं होमवर्क दे रहा है और होमवर्क को प्रैक्टिकल में लाने की विधि भी बता रहा है। जिस होमवर्क के करने से आत्मा भगवान के दुआओं के पात्र बन जाती है और संपूर्णता को सहज प्राप्त कर लेती है। अभी बाप दादा द्वारा होमवर्क मिला है, व्यर्थ से मुक्त रहना। ऐसा देखा है कि लगभग सभी बच्चों में यह संकल्प है कि मुझ आत्मा को व्यर्थ से मुक्त रहना है, और व्यर्थ से मुक्त रहने की विधि बाबा ने बताई, सदा संतुष्ट रहना। जो सदा संतुष्ट होगा वही सदा व्यर्थ से मुक्त रह सकता है, और संतुष्टता का आधार बताया सर्व प्राप्तियां, और सर्व प्राप्तियों का आधार बताया एक तो तीन बिंदी की स्मृति, दूसरा त्रिकालदर्शी बनकर साक्षीपन की स्थिति पर स्थित रहना, और उस स्थिति का आधार है अविनाशी प्राप्ति और अविनाशी संबंध। तो संतुष्टता सिर्फ स्वयं से नहीं, सदा व्यर्थ मुक्त वही रह सकता है जो तीन से संतुष्ट हो, एक स्वयं से, दूसरा बाप से, तीसरा आत्माओं से। स्वयं से, बाप से, आत्माओं से। स्वयं से संतुष्ट रहने के लिए दो बातें चाहिए, एक तो आत्मा पुरुषार्थ से संतुष्ट हो, दूसरा विघ्नों पर विजय हो। बाप से संतुष्टता का आधार है, बाप से जब आत्मा को सर्व प्राप्ति हो जाए तो आत्मा बाप से संतुष्ट होगी, सर्व प्राप्ति करने पर संतुष्ट होगी, और परिवार से संतुष्ट तब होंगे जब परिवार के द्वारा आपको सम्मान मिलेगा। तब परिवार के द्वारा सम्मान मिले, आत्माओं के द्वारा सम्मान मिले, तब आप संतुष्ट रह सकते हैं। हम संतुष्ट हैं उसका निशानी क्या है? अगर आप तीनों से संतुष्ट हैं तो उसकी निशानी है आप प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। संतुष्टता की निशानी प्रसन्नता है, और प्रसन्न आप हैं तो उस प्रसन्नता से प्राप्ति क्या होगी? प्रसन्नता से आपको सर्व के द्वारा प्रशंसा प्राप्त होगा, प्रशंसा अर्थात सम्मान। तो चेक करो कि हम आत्मा संतुष्ट हैं, संतुष्ट हैं तो प्रसन्न चित्त हैं, प्रसन्न चित्त हैं तो सर्व से प्रशंसा आपकी होगी, आपकी महिमा होगी। अगर आपकी महिमा नहीं हो रही है तो आप प्रसन्न भी नहीं रह सकते, और प्रसन्न नहीं है तो अंडरस्टूड संतुष्ट नहीं है। तो इन तीन से हमें संतुष्टता की सर्टिफिकेट लेनी है। पहली बात, स्वयं से प्रसन्न रहना। स्वयं से आप प्रसन्न तब रह सकते हैं जब आप आत्मा को अपनी महानता की अनुभूति होगी। जब आप आत्मा को यह अनुभव होगा कि पाना था सो पा लिया, सर्व शक्तियों का अनुभव हो, ऐसा दिल में आए कि मेरे जैसा महान कोई है ही नहीं, वाह रे मैं, जब दिल की आवाज यह निकले कि वाह रे मैं, मेरे जैसा कोई है ही नहीं, तब आप स्वयं से संतुष्ट रह सकते हैं। क्योंकि जब तक आत्मा स्वयं की महानता का अनुभव नहीं कर पाएगी, तब तक संतुष्ट रह नहीं पाएगी। मेजॉरिटी आत्माओं में असंतुष्टता का कारण यही है। क्या? जो बाप दादा हम आप आत्माओं को संपूर्णता के स्थिति का साक्षात्कार कराते और बाबा संपूर्ण स्थिति के लिए कहते हैं कि इस स्थिति को प्राप्त करना है, और हम बच्चे जो पुरुषार्थ कर रहे हैं तो उस संपूर्णता की स्थिति से और वर्तमान के पुरुषार्थ में अंतर ज्यादा दिखाई देता है, और उस अंतर के कारण संतुष्ट अपने को नहीं अनुभव कर पा रहे। जो बाबा बताता है और वर्तमान में जो हमारा पुरुषार्थ है, लेकिन अगर आप अपने पुरुषार्थ को चेक करो, अपनी प्राप्तियों को चेक करो, तो आप जैसा महान कोई है नहीं। ब्राह्मण आत्माओं में एक कमी है। क्या कमी है? कि अपनी कमी को ज्यादा स्मृति में लाते हैं, प्राप्तियों को नहीं। अगर प्राप्तियों को स्मृति में लाना शुरू कर दें, तो कमी तो अपने आप ही भाग जाएगी। लेकिन हम कमी को ज्यादा सोचते हैं और ज्यादा सोचने के कारण इंसान जो चीज ज्यादा सोचता है वही स्वरूप बनता है। इसलिए अपनी प्राप्तियों को लाओ, जैसे देखो बाप दादा कहता है मुझे वो बच्चा जो लास्ट दाना है 9 लाख का भी लास्ट है वो भी मुझे अति प्रिय है, 9 लाख का लास्ट वो भी मुझे अति प्रिय है। क्यों कहता है अति प्रिय है? क्योंकि संसार की साइंटिस्ट, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े नेताएं, धर्म नेताएं, कोई भी भगवान को पहचान नहीं सके, भगवान से अपना वर्षा नहीं ले सके, और वो आत्मा भगवान को पहचान लिया। इस एक विशेषता के कारण भगवान उस लास्ट नंबर वाली आत्मा को प्यार करता है। ऐसे आप अपनी विशेषताओं को देखो कि हम कितने महान बन चुके हैं। दुनिया में देखो विशेष किसको कहा गया है, या साइंटिस्ट वालों को, या सन्यासी को, या तो मूर्तियों को, या तो नेताओं को, इन्हीं को महान कहा गया है दुनिया में। और इन सबसे ज्यादा महान आप बन चुके हैं, चाहे आपका पुरुषार्थ कैसा भी है, लेकिन आप महान बन चुके हैं। मान लो दुनिया में सन्यासी को ऊंचा समझते हैं, जगत गुरु को ऊंचा समझते हैं। आप इस ज्ञान के पहले अगर कोई सन्यासी आपके सामने आता तो आपका मस्तक झुक जाता। अब अगर कोई सन्यासी क्या शंकराचार्य ही आ जाए तो आप मस्तक झुकाएंगे? झुकाएंगे नहीं ना। क्यों नहीं झुकाएंगे? क्योंकि शंकराचार्य से ज्यादा महान आप बन चुके हो। शंकराचार्य की महानता 2 बात से थी, एक पवित्रता और दूसरा त्याग। त्याग और पवित्रता 2 के कारण शंकराचार्य को महान समझा। उनकी पवित्रता गुरु मत या शास्त्र मत के आधार से है, और आपकी पवित्रता पतित पावन परमात्मा के श्रीमत पर है। देखो कितनी ऊंची पवित्रता है। उनकी गुरु मत या शास्त्र मत और आपकी है पतित पावन परमात्मा के श्रीमत पर। उन्होंने घर का त्याग किया और आप तो सारी पुरानी दुनिया का, इस देह का भी त्याग किया हुआ है। ये देह भी मेरी नहीं है। भगवान ने हमें ये देह दिया है सेवा करने के लिए, भगवान की है। तो सन्यासी से भी ऊंचे हो। आप देखो साइंटिस्ट को, साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं पांच तत्वों का, सूर्य चांद तारा गण से पार नहीं जा सकते हैं। जहां उनका रिसर्च का अंत है वहां से आपकी पढ़ाई शुरू होती है। आपकी पढ़ाई कहां से शुरू है? मैं आत्मा हूं, इन पांच तत्वों से न्यारी हूं। तो जहां उनका अंत है वहां आपकी शुरुआत है। सोचो कितने ऊंचे आप हो। वो साइंटिस्ट स्वप्न में भी परम धाम नहीं जा सकते हैं, सूक्ष्म वतन नहीं जा सकते हैं, और आप सेकंड में पहुंचते हो। तो साइंटिस्ट से भी प्रैक्टिकल में ऊंचे हो, जो स्वप्न में भी नहीं जान सकते हैं वो आप जान गए। मूर्तियों को प्रैक्टिकल में देखो, आप पहले मूर्ति को देखते तो मस्तक झुकाते, अब मूर्ति को देखकर मस्तक नहीं झुकाओगे। क्यों? मूर्ति के आगे लोग मस्तक क्यों झुकाते हैं? दो बात के कारण। एक दिव्यता है मूर्ति में, और दूसरा मूर्ति दाता है। दिव्यता और दाता, यह दोपन के कारण मूर्ति के आगे मस्तक झुकता है। दिव्यता अर्थात देह का भान नहीं। जैसे देखो, चाहे राम की मूर्ति हो या सीता की मूर्ति हो, लक्ष्मी की मूर्ति हो या नारायण की मूर्ति हो, दोनों के मूर्ति को मूर्ति ही कहेंगे। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी के मूर्ति को मूर्ति कहेंगे और नारायण की मूर्ति को मूर्ता कहेंगे। नहीं, दोनों को ही मूर्ति कहा जाता है। उसका आधार वर्तमान है, हम आत्मा हैं, ना स्त्री हैं ना पुरुष हैं, आत्मा हैं। प्रैक्टिकल दिव्य स्वरूप धारी हो, सबसे दिव्य आत्मा है। क्यों? परमात्मा की संतान है। ओरिजिनल स्वरूप में आत्मा परमात्मा के समान है, परमात्मा के साथ घर में रहने वाली है। तो दिव्यता के स्वरूपधारी हो और दाता तो इतने बड़े हो कि मूर्तियों के आगे तो सिर्फ जीव आत्माएं जाती है मांगने के लिए, और आप तो जीव जंतु जानवर प्रकृति के प्रति भी दाता हो। कितने बड़े दाता आप हो। तो देखो प्रैक्टिकल में भी मूर्ति से महान बन चुके हो। बनना नहीं, बन चुके हो। अभी अगर आप इन स्मृतियों को सामने लाओ तो अंदर आता है, सचमुच बाबा आपने मुझे कितना महान बना दिया है, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा दिल से निकलता रहेगा। और जब आपको अपनी महानता का पता पड़ता जाएगा, फिर आगे और आगे महान बनने का संकल्प स्वतः ही इमर्ज होता है। प्राप्ति देख करके पुरुषार्थ स्वतः बढ़ता है। जब तक आप अपनी प्राप्तियों को नहीं सामने लाओगे तब तक पुरुषार्थ आगे बढ़ नहीं सकता है, संतुष्टता को धारण नहीं कर सकते हो। तो पहली बात है, आपको अपनी महानता का अनुभव हो। दूसरी बात, स्वयं से संतुष्ट रहने में विघ्न पड़ता है शारीरिक बीमारी। एक है प्राप्ति, वाह रे मैं, और दूसरा है बीमारी। जब शरीर की बीमारी आती है तो बीमारी संतुष्ट रहने नहीं देती, क्योंकि आत्मा जैसा पुरुषार्थ करना चाहती है कर नहीं पाती है। इसका एक उदाहरण हम अपना ही बताते हैं कि जब से बाबा ने 15 दिन का होमवर्क दिया है, आज 7 तारीख है, जब से होमवर्क दिया तब से तबीयत खराब हुई है, और 3-4 दिन तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब थी। फिर ऐसे बाबा से रूरिहान कर रहे थे, बाबा किस खाते में जाएगा, क्योंकि योग लग नहीं रहा है, दर्द बहुत हो रहा है, ना ऊपर जा पा रहे हैं और ना कुछ कमाई हो रही, संकल्प दर्द की तरफ ही जा रहा है, किस खाते में है। व्यर्थ सोच नहीं रहे हैं लेकिन व्यर्थ ही चल रहा है, सोचते नहीं लेकिन चल रहा है, क्योंकि यह शरीर भी पर है, व्यर्थ इसके बारे में सोचना भी व्यर्थ है, लेकिन ना चाहते संकल्प खींच रहा है। तो ये तो बाबा ने कहा हिसाब किताब है, और हिसाब किताब जब तक रहता है तब तक दवाई सूट नहीं करती, दवाई काम नहीं करती, या तो मिलेगी ही नहीं ठीक से दवाई, या मिली तो काम ही नहीं करती। अब उसमें जब बाबा से रूरियान हो रही थी, तुम कहा बाबा भी इसका कुछ आप करो, तो बाबा ने कहा बच्चे हिसाब किताब खत्म करने की विधि है, बच्चे इस शरीर को भी सकास दो, ये शरीर तुम्हारा नहीं है। फिर बाप के साथ बैठ करके जैसे विश्व को लाइट माइट या सकास देते हैं, बाबा के साथ इस शरीर को भी सकास दिया, उस दिन से तबीयत ठीक होना थोड़ी शुरू हो गई, अभी तो ठीक हो गई। तो बीमारी भी खाते को पीछे खींचती है, तो बीमारी में भी संतुष्ट रहें उसकी विधि मिली। ये तो जानते हैं कि बीमारी पास्ट कर्म का खाता है, सब जानते, लेकिन दर्द तो खींचता ही है ना। हां, कई ऐसे बच्चे हो गए होंगे कि जो इतना अशरीरी स्थिति को प्राप्त कर लिया हो, दर्द ना खींचता हो, ऐसे भी हो सकते होंगे, लेकिन अपना तो अभी तक वो नहीं आया कि जो पूरा दर्द का अनुभव ना हो। थोड़ी देर बन जाते अशरीरी लेकिन फिर भी दर्द खींच लेता था। तो उसकी जो अनुभव की विधि आई कि बीमारी को खत्म करने के लिए बाप के साथ साथ इसको भी करंट दो, सकास दो, तो उस बीमारी का खाता खत्म हो जाएगा। जब उस बीमारी का खाता खत्म होगा तब बीमारी बाय बाय करेगी, छोड़ देगी आपको। दूसरी बात है बाप से संतुष्ट रहना। बाप से संतुष्ट आप तब रह सकेंगे जब बाप का जो भी खजाना है वो आपको प्राप्त हो जाएगा तब। और बाप का सर्व खजाना प्राप्त करने की विधि है, भगवान दाता है, विधाता है, वरदाता है। तो दाता और विधाता को राजी करना। अगर आप दाता और विधाता के रूप में भगवान को राजी कर लिया तो आप सर्व खजाने से संपन्न बन जाओगे, दाता और विधाता। भगवान दाता विधाता है और दोनों को राजी करने की बहुत सहज विधि है कि विधाता और दाता दोनों के श्रीमत को उसी समय जिस समय दिया और जिस रूप में दिया उसी समय फॉलो करना। फर्क किसमें पड़ता है? फॉलो हर एक बच्चा बाबा के श्रीमत को कर रहा है, लेकिन कोई जिस समय बाबा ने जिस रूप से कहा उस रूप से उसी समय फॉलो करता है, और कोई उस श्रीमत को थोड़े समय के बाद फॉलो करता है। तो जो थोड़े समय के बाद फॉलो करता है वो दाता विधाता को राजी नहीं कर सकता है। राजी वही कर सकता है कि जो श्रीमत मिली उस श्रीमत को उसी समय उसी रूप से फॉलो करना। जैसे उदाहरण के रूप से गुलजार दादी अनुभव सुनाती है कि एक बार हमने मम्मा से पूछा, मम्मा जिसने आपको कोर्स कराया, 7 दिन का कोर्स कराया, उससे भी मम्मा आप आगे चली गई, आपने क्या पुरुषार्थ किया? हम में से भी आप आगे हो, क्या पुरुषार्थ किया जो आप मम्मा बन गई, सबसे आगे चली गई? तो मम्मा का एक ही रिस्पांस था कि मैं क्या पुरुषार्थ किया ये तो नहीं जानती, लेकिन इतना है कि जो बाबा ने कहा जिस समय कहा उस समय उस श्रीमत को मुझे फॉलो करना ही है, उस श्रीमत को मैंने उसी समय फॉलो किया। बाबा ने कहा और मुझ आत्मा का उस पर पुरुषार्थ चल पड़ना, इसलिए मम्मा नंबर 1 चली गई। तो गुलजार दादी अनुभव सुनाती थी कि बाबा ने बोला चित्र बनाने के लिए, उस समय झाड़ बनता था, गोला बन रहा था, तो बाबा ने कहा इसको तैयार करना है। तो गुलजार दादी कहती कई बहनें तो चली गई रेस्ट करने और मम्मा बैठी, सबने कहा मम्मा वो तो बहन आई नहीं, बोला देखो बाबा ने कहा है मैं तो करूंगी, जिसको बैठना हो बैठो, जिसको सोना हो जाके सो जाओ। तो जो बाप ने कहा, जिस समय कहा, जिस रूप में कहा, मम्मा ने वो श्रीमत उसी समय उसी रूप से फॉलो किया। जैसे कई बार बाबा मुरली में कहता है कि तुम बच्चे मुझे परम धाम में याद करो, बाप परम धाम रहता है। भले यहां बाबा मुरली चला रहा है, लेकिन तुम्हारा बुद्धि योग परम धाम में होना चाहिए। बाबा परम धाम से आकर पढ़ाता है, परम धाम में बाबा रहता है। और अभी कुछ दिन पहले बाबा ने कहा, बाप को इस ब्रह्मा के तन में याद करो। बाबा परम धाम से आया हुआ है, इस समय आपके सन्मुख है, ब्रह्मा के थ्रू याद करो। अब देखो बाबा दोनों बात कहता है, कभी कहता इसका फोटो भी नहीं रखो, इनको याद ही नहीं करो, और कभी कहता इनके थ्रू याद करो। इनके बिना तो शिव बाबा की याद कैसे आएगी, इनके बिना कैसे पढ़ोगे। तो जिस समय बाबा जो कहता है, उस समय उसी रूप से वो पुरुषार्थ करना, माना भाग की विधाता को राजी करना है। अगर उस समय भी हम अपने रीति के प्रमाण योग करते रहे, अपने रीति के प्रमाण पुरुषार्थ करते रहे, तो भाग्य विधाता को राजी नहीं कर पाएंगे। जैसे जब बाबा ये कह रहा है कि मुझे ब्रह्मा के द्वारा याद करो, ब्रह्मा के थ्रू याद करो, मैं यहां नीचे आ गया हूं, मुझे नीचे याद करो, फिर भी कई बच्चे नहीं, मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु परम धाम की रहने वाली हूं, वहीं शिव बाबा रहता है, वहीं याद करना है, ये रांग है। जिस समय बाबा ने जो कहा, योग राइट है, परम धाम याद करना रांग नहीं है, लेकिन उस समय के लिए वो रांग है। जैसे कई बार बाबा कहता है कि आप पावरफुल स्थिति में मुझे याद करो, ऐसे याद करो जो यहां सब कुछ भूल जाए, बस मैं आत्मा बाबा के प्यार में समा गई। लेकिन बाबा कहता है अगर बाबा मुरली चला रहा है, टीचर बन करके पढ़ा रहा है, और कोई बच्चा पावरफुल याद में जाकर बैठे, ये उस समय पावरफुल याद में जब बाबा मुरली चला रहा है, पावरफुल याद में सब भूल के ऊपर बैठना रांग है। तो जो श्रीमत जिस समय मिली, जिस रूप में मिली, वो श्रीमत उसी समय उसी रूप से फॉलो करना, ये बहुत आवश्यक है। हम कहते हैं बाबा ने इस मुरली में कहा था ना, ठीक है, उस मुरली में वो कहा था, उस समय वो आवश्यक था। जैसे देखो, मान लो आप बीमार पड़ो, आपके शरीर में शुगर कम है, और डॉक्टर कहे आपको शुगर लेनी है, ठीक है, शुगर कम था ले लिया, फिर आपको शुगर की बीमारी भी आ जाए, तो भी क्या यही कहोगे कि डॉक्टर ने कहा था शुगर लेनी है? नहीं ना, कभी तो डॉक्टर ने कहा था लेनी है, लेकिन आज नहीं कह रहा है लेनी, आज कह रहा है शुगर नहीं लेनी, तो आप कौन सी बात पर चलोगे? पीछे वाली बात पर या वर्तमान वाली बात पर? किस पर चलेंगे पांडव? वर्तमान पर ना, क्योंकि वर्तमान पर चलने में फायदा है। अगर आप पीछे वाली ही बात लेकर चले तो भल डॉक्टर ने ही कहा था लेकिन आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो बाबा ने ही कहा है यही शब्द लेकर नहीं चलो। बाबा ने कौन सा शब्द किस समय किस रूप से कहा है वो देखो, और जो बाबा वर्तमान में कह रहा है, टीचर सन्मुख पढ़ा रहा है, तो जो वर्तमान में कह रहा है उसका पुरुषार्थ करो। अब कईयों को ये संकल्प होगा कि ये मुरली तो साकार में बहुत पहले चल चुकी है, कैसे उसको माने वर्तमान में है? चली कब भी, लेकिन आप सुन तो पहली बार रहे हैं ना। अच्छा, पहले सुनी भी होगी लेकिन आपको कोई पॉइंट याद है? नहीं ना। तो जो जिस समय कह रहा है, क्योंकि हमारे और आपके पुरुषार्थ का आधार मुरली ही है, हम आपका पुरुषार्थ आगे बढ़े उसका गाइडेंस कौन दे रहा है? मुरली। अगर कोई बड़े भाई बहने क्लास कराते भी हैं, अनुभव सुनाते भी हैं, तो कहां से वो पॉइंट लाए हैं? मुरली से। जो बाबा ने सुनाया है वही उनको चाहे साकार बाप के समय, चाहे अव्यक्त बाप दादा के समय, चाहे स्वयं के पुरुषार्थ में जो अनुभव हुआ है वो। एक बार तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की रूरियान थी, मुरली में सुना होगा, ब्रह्मा बाबा बीच में अपना अनुभव सुनाता है। तो बाबा ने सुनाया था मुरली में कि पहले जमाने में जो राजाएं होते थे तो जो मुसलमान के यहां बुर्का पहनती थी, तो शिव बाबा ने कहा ये इसका अनुभव है, ये जाने, मैं इन बातों में नहीं जाता हूं, ये अपना अनुभव सुनाता है, मैं तो सिर्फ वही सुनाता हूं जो ये नहीं जानता है। सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाता हूं, आत्मा कैसे पावन बने वो मैं सुनाता हूं, बाकी ये अपना अनुभव सुनाता है। तो बीच में चाहे किसी भी आत्मा के द्वारा आपको मिलता है सुनने के लिए, तो या तो उसका अपना अनुभव या जो मुरली से सुना वो बातें बताते हैं। तो विशेष अंडरलाइन है भाग्य विधाता और वरदाता को राजी करने की विधि, जो श्रीमत जिस समय मिली जिस प्रकार से मिली उस श्रीमत को उसी समय हाँ जी करना। तो बहुत सुंदर बाबा ने कहा था, आप हाँ जी करो और हजूर हाजिर हो जाएगा, और जहां हजूर हाजिर हो गया वहां सर्व प्राप्तियां हाजिर हो जाएंगी। जहां हुजूर है वहां तो प्राप्तियां सब है ही है, क्योंकि शिव बाबा बीज रूप है, बीज में सब कुछ समाया है। तो जहां बीज है वहां सब कुछ होगा ही होगा। तीसरी बात है आत्माओं के द्वारा सम्मान प्राप्त करना। आत्माओं के द्वारा सम्मान प्राप्त तब होगा जब आप आत्माओं के प्रति इन विशेषताओं को धारण करेंगे। क्या? एक तो निमित्त भाव, निर्माण भाव, निःस्वार्थ भाव, निर्मल वाणी और शुभ भावना, शुभ कामना। जब सेवा साथियों के साथ या परिवार के साथ या कहीं भी हैं, अगर यह विशेषताएं आप ले आओ, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निःस्वार्थ भाव, निर्मल वाणी और शुभ भावना, शुभ कामना, तो आपको सबके द्वारा सम्मान प्राप्त होगा। अब इसमें थोड़ा गहराई से सोचो, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निःस्वार्थ भाव। निमित्त निर्माण अहंकार से बचाएगा, जहां अहंकार नहीं है नम्रता है, तो नम्रता वाले को मान मिलता ही है। नम्रता वाला हमेशा सेफ रहता है। आपने सुना होगा, तूफान आता है, अगर कोई पौधा अकड़ के खड़ा है तो तूफान पावरफुल होगा तो पौधा टूट जाएगा। और आपने देखा होगा, तूफान आता है, घास जो होती है वो ऐसे झुक जाती है, तूफान ऊपर से चला जाता है, फिर घास खड़ी हो जाती। तो जो झुकता है वो सेफ रहता है। निमित्त निर्माण ये हमारी सेफ्टी का साधन, अक्कड़पन नहीं आएगा, अभिमान नहीं आएगा। और निःस्वार्थ भाव, निःस्वार्थ भाव हमें ईर्ष्या से बचाता है। नहीं, जहां स्वार्थ है वहां ईर्ष्या उत्पन्न होती है। निःस्वार्थ भाव ईर्ष्या से बचाएगा। और इस ब्राह्मण जीवन में सबसे बड़ा शत्रु ईर्ष्या ही है। और ब्राह्मण आत्माओं का, ब्राह्मण आत्माओं में हिसाब किताब सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा होने के कारण ब्राह्मणों का ब्राह्मणों से ईर्ष्या बहुत जल्दी होती है। अज्ञानियों से नहीं होती है, लेकिन ब्राह्मण ब्राह्मणों से बहुत होती है। उदाहरण के रूप से मान लो आप लोग आए हो, आपकी टीचर सिर्फ आप में से किसी एक भाई या बहन को ज्यादा सम्मान दे, दादी से मिला दे या बाबा से मिला दे, आपको नहीं मिलाए, क्या हालत होगी आपकी? सब अनुभवी हैं, तुरंत संकल्प उठ जाएगा। और वहीं पर अगर एक अज्ञानी आत्मा को टीचर सम्मान देती, दादी से मिलाती, बाबा तक भी ले आती, तो आप खुश होते। अज्ञानी को बढ़ता देखकर खुश हो रहे हैं, और ज्ञानी थोड़ा सा भी आगे बढ़ा तो ईर्ष्या आ जाती है। क्यों ईर्ष्या आई? क्योंकि ज्यादा जन्म हमारा इन्हीं के साथ रहा है, इसलिए इनके साथ हमारा हिसाब किताब बहुत ज्यादा है। तो हिसाब किताब ईर्ष्या ले आती है, चाहते नहीं है ये। हर एक ब्राह्मण चाहता हमारा परिवार बढ़े तो अच्छा है, अंदर की चाहना ये है, लेकिन प्रैक्टिकल कुछ और हो जाता है। तो निस्वार्थ भाव से ईर्ष्या से बचेंगे और निर्मल वाणी होने से टकराव से बच जाएंगे। टक्कर बहुत जल्दी होती है वाणी के कारण, तो जितना निर्मल वाणी होगी टकराव से बचेंगे, और जितना शुभ भाव और शुभ कामना होगी, शुभ भावना और शुभ कामना जितना होगी उतना आपको दुआएं मिलेंगी। शुभ भावना शुभ कामना, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं शुभ भावना तो रख लेती हैं, लेकिन शुभ कामना नहीं रख पाती। क्या अंतर है शुभ भावना शुभ कामना में? क्या अंतर है शुभ भावना और शुभ कामना, या दोनों एक ही है? क्या सुना रही शक्तियां, दोनों एक है या दोनों दो है? शुभ भावना शुभ कामना क्या अंतर है जी? पहला शब्द है, हां जी, पहला शब्द है शुभ भावना, फिर है शुभ कामना। जो आपने मुझ आत्मा के प्रति शुभ भावना रखी कि यह भाई या बहन आगे बढ़े, इसका भी कल्याण हो, जो भावना रखी उस भावना प्रमाण आपका कर्म भी हो। भावना होती है, कर्म नहीं होता है। आपकी भावना है ये भाई आगे बढ़े, शुभ भाव, शुभ का मतलब ही है आगे बढ़े। आपकी भावना है ये शुभ भाई आगे बढ़े, लेकिन जब प्रैक्टिकल में आता है तो लगता नहीं मैं आगे बढ़ जाऊं तो ठीक, मुझे बाबा से पहले मिलाया जाए, मुझे दादी से पहले मिलाया जाए, मुझे इस बात में पहले पूछा जाए, तो कामना में अंतर हो जाता है। शुभ भावना है लेकिन शुभ कामना नहीं है। इसीलिए भावना के साथ कामना शब्द जुड़ा हुआ है। शुभ भाव रखना फिर भी इजी है, वैसे ये भी थोड़ा मेहनत की चीज है, लेकिन फिर भी हो सकता है, क्योंकि शुभ भाव सूक्ष्म है और शुभ कामना स्थूल है, दिखाई देती है। तो सूक्ष्म चीज तो कोई देख ही नहीं रहा है, आप जानो और बाबा जाने, और तो तीसरा साकार में कोई देख नहीं रहा है, लेकिन शुभ कामना में आप जानो बाप जाने और जिस आत्मा के लिए रखा वो भी जाने और साथी भी जाने, प्रैक्टिकल हो जाता। तो जहां इतने जानने वाले हों वहां देह भान इमर्ज हो जाता है, व्यक्त भाव आ जाता है। तो शुभ भावना और शुभ कामना, जब यह बातें रखो तो आपको अन्य आत्माओं से सम्मान मिलेगा। अब शुभ कामना रखने की विधि है, कैसे हर आत्मा के प्रति शुभ कामना प्रैक्टिकल में रह सकती है, एक छोटी सी विधि अपना लो कि जिस भी आत्मा के प्रति आप रख रहे हो वो कैसी भी है, लेकिन उस आत्मा को भगवान ने पसंद किया है, मेरे बाप ने इसे पसंद किया है। तो जिसको परमात्मा ने पसंद किया है उस परमात्मा की पसंद की हुई आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रख रहे हैं तो आपकी रह सकती है, नहीं तो उसकी कमी या आपके साथ कुछ घटना ऐसी घटी होगी तो वो स्मृति आते ही शुभ कामना हट जाएगी। और अगर शुभ कामना हट गई तो ना तो उनसे सम्मान मिलेगा ना उनसे दुआ मिलेगी, आपका हिसाब किताब वहीं रह जाएगा, आपकी शुभ भावना शुभ कामना काम नहीं कर पाएगी। तो सदा संतुष्ट रहने के लिए स्वयं से बाप से और आत्माओं से तीन सर्टिफिकेट प्राप्त करो, तब आप सदा के लिए व्यर्थ से मुक्त रह सकते हैं और बाप दादा को आने पर चार्ट दे सकते हैं, हाँ बाबा मैं आत्मा व्यर्थ से मुक्त रही। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।